एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हस्ती की जिनका नाम सुनते ही एक आराम, स्वाद और मेहमान नवाजी का एहसास होता है। ईना गार्टन।
हाँ, और उनकी आने वाली आत्मकथा बी माई गेस्ट, उसको लेकर काफी चर्चा भी है।
बिल्कुल, और ईना गार्टन का सफर भी तो देखिए। अमेरिकी लेखिका, शेफ, टीवी होस्ट, उद्यमी और, जो बात शायद कई लोगों को पता ना हो, व्हाइट हाउस की पूर्व नीति विश्लेषक भी।
सही कहा, ये जो उनका सफर है व्हाइट हाउस में परमाणु ऊर्जा जैसे मुद्दे पर काम करने से लेकर अमेरिका की सबसे पसंदीदा फूड पर्सनालिटीज में से एक बनने तक का, ये अपने आप में कमाल है।
हाँ, ये सिर्फ एक करियर चेंज नहीं है, ये तो पूरी तरह से खुद को दोबारा खोजने जैसा है।
बिल्कुल, और उनकी कहानी या ये किताब सिर्फ रेसिपीज के बारे में नहीं है, ये उस हिम्मत की कहानी है कि कैसे कोई एक जमा जमाया प्रतिष्ठित रास्ता छोड़ दे क्योंकि वो उसे खुशी नहीं दे रहा।
और फिर खुशी कहाँ मिले, दूसरों को खाना खिलाने जैसे एक बुनियादी काम में।
हाँ, अपना असली पैशन, अपना उद्देश्य उसमें ढूंढना। और ये जो रातों रात सफलता वाली बात होती है ना,
हाँ, वो मिथक भी टूटता है। हाँ।
बिल्कुल, उनका जीवन दिखाता है कि सालों की मेहनत, सोचे समझे जोखिम और इस विश्वास के साथ खाने से रिश्ते बनते हैं, ये सब लगता है।
और ये बात भी तो कितनी दिलचस्प है कि जिस लड़की को बचपन में माँ की रसोई में जाने की इजाजत नहीं थी,
हाँ,
उसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी रसोई में बुला लिया, एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया।
इसमें एक भावनात्मक गहराई है ना?
बिल्कुल, तो चलिए ईना गार्टन की इस यात्रा को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उनके फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब शुरुआती सालों से।
उनका जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन वो पली बड़ी स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट में।
पिता सर्जन थे और माँ डाइटिशियन।
हाँ, और जैसा आपने कहा, माँ के लिए खाना मतलब फ्यूल, ईंधन था, आनंद नहीं। और ईना का रसोई में जाना वो बिल्कुल मना था। और शायद यही अनुभव कहीं ना कहीं बाद में उनके काम के पीछे एक अनकहीं प्रेरणा बना, जैसे वो उसी गर्मजोशी, उसी स्वागत को बनाना चाह रही थीं जो उन्हें शायद बचपन में नहीं मिला।
और इसी दौरान 15 साल की उम्र में एक अहम मुलाकात हुई।
हाँ, जेफ्री गार्टन से। वो डार्टमाउथ कॉलेज गई थी अपने भाई से मिलने और वहीं जेफ्री से मिली। ये मुलाकात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी।
मतलब ये सिर्फ एक संयोग नहीं था।
बिल्कुल नहीं, ये उनके जीवन का सबसे मजबूत रिश्ता बना। जेफ्री ने न सिर्फ उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया, बल्कि उनकी काबिलियत को पहचाना, शायद ईना से भी पहले,
और हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया।
हाँ, हमेशा। ये साझेदारी उनके हर बड़े कदम, हर जोखिम के पीछे एक स्थिर ताकत रही।
पैर बहुत से रैक्यूज यूनिवर्सिटी गई अर्थशास्त्र पढ़ने।
हाँ, लेकिन वियतनाम युद्ध के दौरान जब जेफ्री सेना में गए तो ईना ने शादी करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। ये भी एक बड़ा फैसला था उस समय,
और शायद यहीं से उनकी असली आत्मखोज शुरू हुई,
कह सकते हैं। जब जेफ्री थाईलैंड में थे, ईना अकेली थी, और अकेलापन दूर करने के लिए, जुड़ाव महसूस करने के लिए, उन्होंने जूलिया चाइल्ड की किताब उठाई, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फ्रेंच कुकिंग।
अच्छा।
हाँ, और खुद को खाना बनाना सिखाना शुरू किया। वो रसोई जो कभी बंद थी उनके लिए,
वही उनका क्लासरूम बन गई।
हाँ, उनका सेफ स्पेस, उनका अभयारण्य। खाना बनाना सिर्फ एक स्किल नहीं रहा, वो प्यार जताने का, खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका बन गया।
फिर जेफ्री वापस आए और वे लोग वॉशिंगटन डीसी चले गए।
जी, और ईना ने अपनी डिग्री जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पूरी की, और फिर आया वो करियर वाला हिस्सा जो सबको चौंकाता है,
व्हाइट हाउस,
ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, OMB में नौकरी, फोर्ड और कार्टर प्रशासन के दौरान। हाँ, OMB मतलब सरकार के बजट और नीति प्रबंधन का काम, और उनका काम परमाणु ऊर्जा नीति विश्लेषक।
सोचिए जरा, परमाणु सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स पर बजट रिपोर्ट लिखना।
बौद्धिक रूप से तो बहुत दिलचस्प रहा होगा।
हाँ, लेकिन शायद वो खुशी नहीं मिली।
बिल्कुल, उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं मिल रही थी, अंदर एक खालीपन था जो वो तर्क और विश्लेषण से भर नहीं पा रही थी।
और यहीं से कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है।
हाँ, अपने 20वें दशक के अंत में वो इस नौकरी से खुश नहीं थी, और एक दिन उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक छोटा सा विज्ञापन देखा।
वेस्टहैम्पटन बीच में एक दुकान बिक रही थी।
हाँ, बेयरफुट कॉन्टेसा नाम की एक स्पेशलिटी फूड स्टोर, मतलब ऐसी दुकान जहाँ खास अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है।
ये तो एकदम अचानक से हुआ होगा।
बिल्कुल, आवेग में लिया फैसला जैसा। जेफ्री ने भी कहा, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद हो, तो इना ने बिना किसी अनुभव के एक ऑफर दे दिया और हैरानी की बात वो मान गए।
तो 1978 में 30 ईयर्स की उम्र में
हाँ व्हाइट हाउस की नौकरी छोड़ी और 400 वर्ग फुट की वो दुकान संभाल ली। न कुकिंग की ट्रेनिंग, न बिजनेस का अनुभव, कुछ नहीं।
ये वाकई बहुत बड़ा जोखिम था, एक सेट करियर छोड़कर बिल्कुल अनजान रास्ते पर।
हाँ, और शुरुआती साल बहुत मुश्किल थे। दिन में 18-18 घंटे काम, पेरोल, इन्वेंट्री, और हाँ, परफेक्ट स्कॉन कैसे बनाए, सब कुछ खुद सीखा।
लेकिन मेहनत रंग लाई
धीरे धीरे। दुकान अपनी क्वालिटी, सादगी और सबसे बढ़कर वो जो एक अपनापन था उसके लिए मशहूर हो गई। वो सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वो एक कम्युनिटी हब बन गई।
लेकिन फिर लगभग 20 साल बाद 1996 में उन्होंने दुकान बेच दी।
हाँ, वो बर्नआउट महसूस कर रही थीं, लगातार काम करके थक गई थीं। उन्होंने दुकान अपने कर्मचारियों को बेची और एक साल का ब्रेक लिया।
और इसी ब्रेक में किताब का आइडिया आया।
जेफ्री और दोस्तों ने उन्हें बहुत मनाया कि वो अपनी रेसिपीज लिखें। काफी हिचके के बाद उन्होंने द बेफुट कॉन्टेसा कुकबुक लिखी जो 1999 में आई।
और वो किताब तो आते ही हिट हो गई।
जबरदस्त हिट, एकदम तुरंत। उस किताब ने इना की आवाज को स्थापित कर दिया। वो शांत, भरोसेमंद अंदाज और उनका फलसफा कि अच्छा खाना बनाना आसान हो सकता है।
फिर को कई और बेस्ट सेलर आई और फिर आया टीवी का ऑफर
फूड नेटवर्क से। ये एक और बड़ी चुनौती थी, उन्हें कैमरे से बहुत डर लगता था।
हाँ, ये आपने बताया था।
उन्होंने शुरू में मना भी किया लेकिन फूड नेटवर्क वाले लगे रहे। आखिरकार इना को लगा कि अपनी बात कि अच्छी होस्टिंग और अच्छा खाना मुश्किल नहीं है, ज्यादा लोगों तक पहुँचाने का यही सबसे अच्छा तरीका है।
और 2002 में शुरू हुआ बेयरफुट कंटेसा
और उस शो ने तो जादू कर दिया। उन्होंने अपनी किताबों वाला ही अंदाज टीवी पर उतारा, उनका अपना घर ही सेट बन गया।
हाँ, ऐसा लगता था जैसे हम सीधे उनकी रसोई में ही हैं।
बिल्कुल, शो ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई, एक कल्चरल आइकॉन बना दिया। ये सिर्फ कुकिंग शो नहीं था, ये एक लाइफस्टाइल के बारे में था, अच्छी मेहमान नवाजी, सच्ची दोस्ती, रोजमर्रा की खूबसूरती।
और ये सिलसिला चलता रहा, 13 बेस्ट सेलर किताबें, लगभग 20 साल तक शो।
हाँ, और उन्होंने जानबूझकर अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा फैलने नहीं दिया ताकि क्वालिटी बनी रहे। अब ये जो आत्मकथा आ रही है, ये उनके लिए जीवन भर के अनुभवों को देखने और एक मतलब भरी जिंदगी की कहानी बताने का एक तरीका है।
तो अगर हम उनके काम के पीछे के मूल दर्शकों को समझें, वो क्या है, कौन सी वैल्यूज हैं जो उन्हें ड्राइव करती हैं?
मुझे लगता है उनका जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, वो उदारता का एक रूप है और इससे समुदाय बनता है।
खाना सिर्फ खाना नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्यार, आराम, कनेक्शन, ये सब जताने का एक जरिया है। लोगों को साथ लाना, उन्हें सहज महसूस कराना, ये सबसे जरूरी है।
और उनके वो मशहूर फ्रेज जैसे हाउ इजी इज दैट,
हाँ, ये कितना आसान है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है,
ये एक मिशन स्टेटमेंट जैसा लगता है।
बिल्कुल, ये इस बात पर जोर देता है कि एलिगेंट खाना और अच्छी होस्टिंग मुश्किल नहीं होनी चाहिए, सबके लिए मुमकिन है। और वैसे ही स्टोव बॉट इज फाइन।
हाँ, बाजार से खरीदा हुआ भी ठीक है, ये तो आज के परफेक्शनिस्ट माहौल में कितनी राहत देता है।
सही कहा, इसका मतलब है कि रिश्तों को प्राथमिकता दो, मेहमानों के साथ वक्त बिताओ, हर चीज खुद बनाने की चिंता से ज्यादा जरूरी ये है।
तो सहज दिखने के पीछे काफी प्लानिंग होती है।
हाँ, यही उनका सीक्रेट है, काम पहले से कर लो, अच्छी चीजें चुनो, तैयारी पहले करो ताकि जब मेहमान आए तो आप तनाव में ना हो, उनके साथ हो। असली उदारता यही है, अपना समय और ध्यान देना।
और उनकी अपनी प्रेरणाएं क्या थीं? क्या सिर्फ वो बचपन वाली कमी थी या कुछ और भी?
बचपन का अनुभव तो जरूर रहा होगा, एक ऐसा माहौल बनाने की चाहत जहां सब स्वागत महसूस करें। उनका छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, फूल कैसे लगे हैं, रेसिपी कितनी सटीक है, ये सब दूसरों के लिए एक भरोसेमंद अनुभव बनाने की कोशिश है।
लेकिन उनकी वो बौद्धिक क्षमता,
हाँ, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस से किचन तक का सफर महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं था, उसे एक नई दिशा देना था।
मतलब वही दिमाग, वही विश्लेषण।
बिल्कुल, जो विश्लेषणात्मक कठोरता वो परमाणु नीति पर लगाती थीं, वही उन्होंने रेसिपी बनाने, बिजनेस चलाने, ब्रांड बनाने में लगाई। वो हमेशा सीखती रहती हैं, टेस्ट करना, बेहतर बनाना, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, चाहे वो डिनर पार्टी की लॉजिस्टिक्स हो या रेसिपी की केमिस्ट्री।
अगर हम उनके जीवन के मोड़ों पर नजर डालें तो कौन से तीन पल सबसे ज्यादा निर्णायक रहे जिन्होंने वाकई दिशा बदल दी?
हाँ, जरूर। पहला तो मेरे ख्याल से 15 साल की उम्र में जेफरी गार्टन से मिलना ही था।
हमने बात की थी इस पर, ये इतना अहम क्यों था?
क्योंकि जेफरी सिर्फ पति नहीं थे, वो उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे बौद्धिक और भावनात्मक रूप से। उन्होंने इना की क्षमता को तब देखा जब शायद इना खुद भी नहीं देख पा रही थी, और उन्होंने हमेशा उन्हें आगे बढ़ाया। इसी मजबूत रिश्ते की वजह से इना इतने बड़े जोखिम उठा पाए। हर बड़ा फैसला, नौकरी छोड़ना, किताब लिखना, सब में जेफरी का पूरा साथ था। ये नींव थी उनकी।
और दूसरा बड़ा मोड़, वो दुकान खरीदना?
हाँ, 1978 में बेयरफुट कॉन्टेसा स्टोर खरीदना, व्हाइट हाउस की नौकरी छोड़कर वो छोटी सी दुकान लेना, ये इसलिए अहम था क्योंकि ये उनकी अंदरूनी खुशी की तलाश का प्रतीक था। ये दिखाता था कि बाहरी सफलता से ज्यादा उनके लिए अपनी संतुष्टि मायने रखती थी।
ये सिर्फ नौकरी बदलना नहीं था।
नहीं, ये अपनी पहचान को फिर से गढ़ना था। इसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पारंपरिक सफलता के रास्ते से हटकर वो रचनात्मकता और उद्यमिता के रास्ते पर आ गई। वो दुकान उनकी असली ट्रेनिंग ग्राउंड बनी। वहीं उन्होंने अपना पैशन पाया, अपना दर्शन विकसित किया।
ठीक है, और तीसरा?
तीसरा मेरे हिसाब से 2002 में फूड नेटवर्क का शो होस्ट करना स्वीकार करना, वो भी तब जब उन्हें कैमरे से इतना डर लगता था।
हाँ, उस डर पर काबू पाना
और लाखों लोगों के सामने आना। फूड नेटवर्क पीछे पड़ा रहा और आखिर में उन्हें लगा कि यही तरीका है अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का।
और ये क्यों इतना निर्णायक था?
क्योंकि इस शो ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। उनका जो व्यक्तित्व था, वो गर्मजोशी, वो भरोसा, वो टीवी पर दिखा। इसने इना गार्टन लाइफस्टाइल को लोगों के दिमाग में बिठा दिया। उनका असर किताबों से कहीं ज्यादा बढ़ गया। वो दुनिया भर की किचन में एक दोस्त जैसी बन गई।
इना गार्टन की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? आज के दौर में जहां लोग अक्सर अपने करियर, अपने जीवन के मतलब के बारे में सोचते रहते हैं, ये कहानी क्यों मायने रखती है?
सबसे पहला सबक तो यही है कि आप किसी भी उम्र में खुद को बदल सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने 30 साल की उम्र में सब कुछ बदल दिया। ये उन सबके लिए प्रेरणा है जिन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो गई है।
और ये भी कि सफलता का मतलब क्या है, ये हमें खुद तय करना होता है।
बिल्कुल, बाहरी पहचान से ज्यादा जरूरी है वो काम ढूंढना जो आपको अंदर से खुशी दे। और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि उदारता, लोगों का ख्याल रखना, ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी हो सकता है।
हाँ, देखभाल पर आधारित बिजनेस कामयाब हो सकता है, और एक मजबूत साझेदारी का महत्व भी दिखता है जेफरी के साथ उनका रिश्ता।
निश्चित रूप से, और एक और बात, अनुशासन। उनकी वो जो सहज स्टाइल है ना,
हाँ, वो आसान नहीं लगती।
वो बहुत ज्यादा तैयारी और अनुशासन का नतीजा है, और डर के बावजूद आगे बढ़ना, नौकरी छोड़ना, किताब लिखना, टीवी करना, हर बार डर लगा होगा पर वो रुकी नहीं।
आज के समय में बर्नआउट, करियर की चिंता, असली रिश्तों की कमी, इन सब के बीच उनकी कहानी और भी प्रासंगिक लगती है।
मैं सहमत हूँ, जो लोग अपने रास्ते पर सवाल उठा रहे हैं उनके लिए ये कहानी एक तरह का नक्शा हो सकती है। ये याद दिलाती है कि खुशी शायद तयशुदा रास्तों से हटकर मिले, और इस डिजिटल दुनिया में साथ बैठकर खाना खाने, असली कम्युनिटी बनाने पर उनका जोर, वो सुकून भी देता है और जरूरी भी लगता है।
तो इस पूरी बातचीत से अगर हम 3 खास बातें निकालें, वो क्या होंगी?
पहली, एक भावनात्मक बात, इना और जेफरी की 50 साल से ज्यादा की प्रेम कहानी और साझेदारी, यही वो बुनियाद थी जिसपे उनकी सफलता खड़ी हुई। ये आपसी भरोसे और एक दूसरे को लगातार सपोर्ट करने की कहानी है। ये याद दिलाता है कि एक मजबूत निजी रिश्ता हमें दुनिया में कुछ भी करने का हौसला दे सकता है।
ठीक है, दूसरी शायद एक बौद्धिक पहलू।
हाँ, दूसरी एक बौद्धिक बात, स्किल्स का ट्रांसफर होना। व्हाइट हाउस में जिस बारीकी से, जिस अनुशासन से वो परमाणु नीति पर काम करती थी, वही दिमाग उन्होंने रेसिपी बनाने, बिजनेस चलाने, ब्रांड बनाने में लगाया। उन्होंने अपनी बुद्धि छोड़ी नहीं, बस उसका फोकस बदल दिया। ये दिखाता है कि हमारे हुनर कितने वर्सेटाइल हो सकते हैं।
दिलचस्प। और तीसरी, एक यूनिवर्सल सीख।
तीसरी और शायद सबसे ताकतवर एक यूनिवर्सल सीख है, हिम्मत। पारंपरिक सफलता या सुरक्षा के ऊपर अपनी असली खुशी और संतुष्टि को चुनने की हिम्मत। उनकी कहानी ये सवाल खड़ा करती है, क्या हो अगर वो रास्ता जिसे दुनिया पागलपन कहे, वही आपके लिए सही हो? शायद असली जोखिम नया रास्ता चुनना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलते रहना है जो आपका है ही नहीं।
वाकई ये सोचने वाली बात है। इनिया घाटन की कहानी सिर्फ खाने या मेहमान नवाजी की नहीं, ये एक सार्थक और अपने अंदाज में जीने की कहानी है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।